हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम अथ दशमोध्याय अध्याय 10 द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक नंबर 1। शोनक उवाच हत्वा सरिक्थ स्प्रिद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मवृत्ता वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन कथं प्रवृत्त किमकार शीततः हत्वा सरिक्थ स्प्रिद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकार शीततः हत्वा स्वरिक्थ स्प्रिद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृता वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन कथं प्रवृत्त किमकार शीततः शब्दात् हत्वा स्वरिक्थ स्प्रिद आततायिनो। हत्वा मतलब शोनक मुनि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। शोनक उवाच वे पूछ रहे हत्वा यानी मारकर उनका वध करके स्वरिक्थस्थ वैध पैतृक संपत्ति यानी जो धन के लोलुप्त थे जो धन के लिए बहुत ज्यादा लालायित थे उनका उन आततायों का वध करके युधिष्ठिरो यानी राजा युधिष्ठिर ने धर्मव्रताम धर्म का पालन करने वाले का वरिष्ठ सबसे बड़ा। अब युधिष्ठिर क्योंकि सबसे बड़े धर्म के पालक थे धर्मराज थे तो उन्होंने जब समस्त धन के लोलुप्त दुर्योधन आदि का आततायों का वध किया सहानुजय मतलब अपने अनुजों सहित अपने छोटे भाइयों सहित प्रत्यवरुद्ध यानी रोक दिया भोजन आवश्यकताओं को स्वीकार करना। जब उन्होंने सोचा था जब युद्ध हो गया था और दुर्योधन के सारे आतताई भाई मर गए थे तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन करने वाले थे तो उन्होंने तो बोला था अपने अनुजों सहित सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन के मैं अब इन धन को स्वीकार नहीं करूंगा इन सब वस्तुओं को राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। फिर कथम प्रवृत्त किमकार शीतत कथम प्रवृत्त फिर कैसे लगाओ मतलब फिर कैसे उन्होंने राज्य किया किम क्या कार शयित्वा संपन्न किया तत्पश्चात यानी उन्होंने राज्य कैसे किया उन्होंने बोला था कि मैं राज्य नहीं करूंगा तो फिर उन्होंने राज्य कैसे स्वीकार किया और फिर राज्य स्वीकार करने के बाद उन्होंने किस प्रकार का राज्य किया। वास्तव में भक्तों ये जो आज शौनक मुनि प्रश्न कर रहे हैं वो उस प्रश्न का संबंध 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक से है। जैसे हमने कल श्लोक पढ़ा था ना कि 1.9.49 में पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभु तत्पश्चात् परम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने साम्राज्य का संचालन अपने ताऊ द्वारा तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुबोधित राज नियमों के अनुसार किया धर्म के अनुसार चकार राज्यम धर्मेण। तो जब उन्होंने शौनक मुनि ने इस तरह के शब्द सुने तो उनके मन में ये प्रश्न उठा ये जिज्ञासा उठी क्योंकि सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन कि उन्होंने तो ये सोचा था युधिष्ठिर ने तो सारी वस्तुओं को और राज्य को तिरस्कार कर दिया था, बोला था मैं राज्य नहीं करूंगा, वो राज्य नहीं करना चाहते थे। फिर कथम प्रवृत्त, फिर उन्होंने क्यों इस राज्य को स्वीकार किया, कथम प्रवृत्त, और क्योंकि हत्वा स्वरिक्थस्त प्रद आततायम, कि सारे जब आततायों से उन्होंने राज्य छीन लिया था दुर्योधन अपने और दुर्योधन और उनके छोटे भाइयों को जितने भी उनके साथ थे उनको आतताई कहा है यहाँ पर शौनक मुनि ने, क्योंकि आतताई उसको कहा जाता है जो किसी को जहर देते हैं, किसी की पत्नी को पत्नी के साथ बुरा सलूक करते हैं, या फिर किसी का घर जला देते हैं, किसी को घातक हथियार से मार डालते हैं, और किसी को है ना मारने उसका धन दौलत ये सब हरण कर लेते। तो क्योंकि दुर्योधन इत्यादि ने पांडवों के साथ वो सारे कार्य किए थे जो एक आतताई कहलाने वाला ये व्यक्ति करता है, तो यहाँ पर इसलिए सूत गोस्वामी ने कहा है, शौनक आदि ऋषि जो है वो पूछ रहे हैं, हत्वा स्वरिक्थस्त प्रद आतताइनो, जब इन आतताइयों का की हत्या हो गई, वध हो गया, तो महाराज युधिष्ठिर ने किम प्रवृत्त, किस प्रकार राज्य स्वीकार किया, और किम कार्य शहीत, कैसे राज्य किया। और इस प्रश्न का कारण ये है कि सूत गोस्वामी, क्योंकि शौनक मुनि इससे पूछ रहे हैं कि सूत गोस्वामी ये बताएं कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त होने के कारण युधिष्ठिर महाराज ने ये राज्य स्वीकार किया था, भोगों के लिए स्वीकार नहीं किया था वास्तव में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, तो केवल उनको प्रसन्न करने के लिए ही ये राज्य स्वीकार किया था। तो यहाँ शौनक मुनि की ये इच्छा है कि सूत गोस्वामी जो है वो ये बात बताएं, स्पष्ट करें, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तर वो अगले श्लोक में देंगे, अभी हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अनुवाद देखिए, शौनक मुनि ने पूछा, युधिष्ठिर ने अपने उन शत्रुओं का वध करने के बाद जो उनकी पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, महानतम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन किया, निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सकते थे। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, जहाँ पर जैसे कहा युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ, कि सारे जितने भी धर्मात्मा हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो युधिष्ठिर महाराज थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाहते थे, यानी कि राज्य वैसे ही युधिष्ठिर महाराज का था क्योंकि उनके पिता का राज्य था। अभी धृतराष्ट्र को तो टाइम पीरियड के लिए उसको दिया गया था और दुर्योधन तो वैसे भी योग्य नहीं था, तो क्योंकि राज्य वास्तव में युधिष्ठिर महाराज का था वो और यहाँ पर उसकी क्वालिटी बताई गई है, भले बड़ा नहीं भी होता, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महाराज युधिष्ठिर जो थे वो धर्मात्माओं में सर्वश्रेष्ठ थे। तो राज्य हमेशा धर्म के पास होना चाहिए, युधिष्ठिरो धर्म भृतां वरिष्ठ, युधिष्ठिर क्योंकि सबसे अधिक धर्म वाले थे तो राज्य का अधिकार उन्हीं का था, अतएव भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए वो लड़े, किंतु वे अपनी विजय का भोग ना कर पाए क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अब जैसे युद्ध समाप्त हो गया तो वो भोग नहीं करना चाहते थे, दुखी थे क्योंकि वो जानते थे कि पूरा कुल नाश हो गया और क्या मैं इन कुलों पूरे जितने भी कुल के जीव मरे हैं उनकी शव पर बैठकर राज्य करूं, उसके वो ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण है। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब युधिष्ठिर महाराज को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तो उनका आचरण कैसा था। अब सूत गोस्वामी उनके पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, पहले कि उन्होंने राज्य कैसे किया। पहला प्रश्न क्या है, कथम प्रवृत्त, कि उन्होंने कैसे उस राज्य को स्वीकार किया, और किम कारशित तथा किस प्रकार से राज्य किया। तो कैसे स्वीकार किया उसके लिए सूत गोस्वामी बताएंगे। सूत उवाच वंशम कुरु वंश दावात्मि निर्हृतम सारो हैत्वा भव भावनो हरि निवेशयित्वा निजराज ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमाना बभूवः। वंशं कुरुर्वंश दावा निनिर्हृतं सारो हैत्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमाना बभूवः। वंशं कुरुर्वंश दावा निनिर्हृतं सारो हैत्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमाना बभूवः। शब्दार्थ सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा वंशम, वंश जो था कुरु वंश, कुरु राजा कुरु का वंश, दावाग्नि बांसों के लगाने वाली जंगल की आग। अब देखो वंश जो है उसके दो मतलब होते हैं, वंश का मतलब जो वंश होता है कुल होता है उसको भी बोलते हैं, और यहाँ पर दूसरा जो वंश आया ना वंश दावाग्नि निर्हृतम, यानी बांस जो होते ना जंगल में बांसों से जो अग्नि लगती है उसको कहा जाता है वंश दावाग्नि निर्हृतम, यानी वो अग्नि जो बांसों से लगती है। अब बांसों से कैसे अग्नि लगती है कि जब गर्मी के दिन में बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, तो बांस जो होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं, और बांस जब आपस में टकराते हैं तो स्वयं ही जल कर भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात इसलिए बताई जाए, सूत गोस्वामी इसे कहते हैं कि जब कुरुवंश के जितने भी युवक थे उनके अंदर जब टकराव हुआ, वात का क्या मतलब होता है, एक तो वात का मतलब होता है हवा, जब बहुत ज्यादा तेज हवा लगती है तो क्या होता है बांस टकराने लगते हैं जंगल में। लेकिन उसी प्रकार से बात से क्या होता है, अब देखो वात होता है और बात, बात से क्या होता है अग्नि लगती है, क्रोध अग्नि। जब कोई देखिए हम करें ऐसी बात समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी भी बात से जब झगड़ा होता है तो शुरुआत जो है वो बात से ही होती है। अब शुरू में क्या हुआ, द्रौपदी ने दुर्योधन को कुछ कहा, फिर दुर्योधन ने द्रौपदी को कुछ कहा, फिर भीम ने वापस दुर्योधन को कुछ कहा, इस तरह पहले बात होती है। और हमेशा क्या होता है पहले जो बोल रहा होता है वो सोचता है कि बस मैं बोलूं और सामने वाला सुनकर चुप हो जाए, लेकिन वो चुप कैसे होगा जब उसने सुना है तो उसको रिप्लाई में भी कुछ बोलता है वो, और इस तरह बढ़ते 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 फिर बात हाथापाई पर आती है, फिर जोंटा जोटी होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो विश्व के इतिहास में अनेकों अनेकों युद्ध हो चुके हैं, कोई चाहता नहीं है कि युद्ध हो, लेकिन फिर भी बात से बात बढ़ने लगती है और युद्ध हो जाता है। और ये बात, लेकिन वो संसार में जितने भी युद्ध हुए हैं, ये जो कुरु और पांडवों का जो युद्ध था, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि बाकी युद्ध दो सेनाओं में, दो अलग अलग राज्यों में होते हैं, लेकिन ये एक ही परिवार है, एक ही राज्य है, उनमें जब युद्ध हुआ है तो उसके लिए सूत गोस्वामी ने कहा है वंशम कुरु वंश धावात निर्हृतम, कि अपने ही वंश के, जिस तरह बांस जो है वो अपने ही आपस में टकरा कर जल कर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी कृष्ण की माया से अपने ही कुल के व्यक्ति आपस में युद्ध करके फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसी वंश में, बांसों का क्या होता है, एक बांस जो है उगाया जाता है और फिर बहुत सारे दूसरे बांस उसमें से खुद ब खुद निकलने लगते हैं, बांसों से बांस निकलने लगते हैं, बांसों से बांस दूसरे निकलने लगते हैं, और साथ में उसी प्रकार भगवान ने भी कुरु वंश के समस्त प्राणियों को दावाग्नि में भस्म करा दिया और एक परीक्षित रूपी एक अंकुर को बचाया। और भगवान जानते थे कि ये अंकुर जो है वो पुनः एक धर्मात्मा कुल का निर्माण करेगा, और इस तरह से परीक्षित महाराज के जन्मेजय आदि बहुत सारे पुत्र हुए और उनके बहुत बहुत संतानें हुई और कुरु वंश बहुत समय तक चला। आगे कहते हैं सुत गोस्वामी सरोहित्वा भव भावनो हरि, सरोहित्वा यानी वंश की पौध, यानी परीक्षित महाराज को भगवान ने बचा दिया। भव भावनो हरि, ये भगवान जो सृष्टि का पालन करने वाले हैं, समग्र सृष्टि का पालन करने वाले हैं और समग्र सृष्टि को धर्म पर चलाने का जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, समस्त अधर्मी बांसों को आपस में टकरा कर मरवा डाला और संरोहित्वा भव भावनो हरि, और संसार का पालन करने वाले भगवान हरि ने एक परीक्षित नाम का अंकुर जो है उसको बचाया। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं निवेशित्वा निजराज ईश्वरा, यानी निवेशित इस तरह से भगवान ने पुनः स्थापित किया निज राज्य अपने राज्य में, ईश्वर परमेश्वर ने क्या किया, भगवान ने क्या किया पुनः, अभी निज राज्य क्यों कहा इसको, क्योंकि ये राज्य युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे, तो ये भगवान, ये युधिष्ठिर महाराज का राज्य है, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अपनी इच्छा से राज्य नहीं कर रहे थे, केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राज्य कर रहे थे, इसलिए कह रहे हैं निवेशित्वा निज राज्य ईश्वरो, इसलिए भगवान ने इस राज्य को पुनः स्थापित किया। और युधिष्ठिरं प्रीतमाना बुभुवः, और युधिष्ठिर महाराज को ये राज्य देकर प्रीतमना बुभुवः, प्रीतमना मनी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। अनुवाद देखिए सूत गोस्वामी ने कहा विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यधिक प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह संसार उस दावाग्नि के समान है जो बांस के घर्षण से उत्पन्न होती है, ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में बाह्य कारण के बिना घर्षण होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है जिससे अवांछित लोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और उनसे भगवान को कुछ लेना देना नहीं रहता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं अतएव वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि क्योंकि बांसों में बाह्य कारण से आग नहीं लगती, क्यों लगती है? अपने ही रगड़ से जब संघर्ष उनके अंदर घर्षण होती है उसी से लगती है। उसी प्रकार जब जीव क्रोध करता है अपने ही हृदय के अंदर, अपने ही मन में वो क्रोध की अग्नि भड़काता है और इस तरह से किसी के बारे में किसी की बात सुन लेता है, फिर बाद में हृदय में बहुत बहुत क्रोध आता है कि मेरे से इसने ऐसे बात की या मेरे बारे में इसने ऐसे कहा, ये सब वो सहन नहीं कर सकता है और उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है और फिर युद्ध होने लगता है छोटी छोटी बातों पर भी। आज तो लोग का टेम्पर इतना हाई हो गया है कि सीधी बात भी उनको बताते तो उनको और भी लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा बोल के गए। तो किसी को उनकी उनके विषय में ये भी नहीं बता सकते कि आपने ये मिस्टेक की है या नहीं, बस चुप जैसा जैसा कर रहा है ऐसा। अगर हम कुछ बोलेंगे तो उल्टा और भी हमें ही बुरा कहा जाएगा और क्रोध से ऐसा लगता है कि फिर अग्नि भड़कने लगती है और इसने उसको कहा, इस तरह से अग्नि जलती। शिला प्रभुपाद जी बोलते उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है और जिससे अवांछित लोग समाप्त हो जाते हैं और ऐसी ऐसी जो अग्नियां होती हैं वो युद्ध या युद्ध भड़कते रहते हैं। लेकिन अब इन क्योंकि ये भौतिक इच्छाओं के कारण होती हैं, अपने मन अपने क्रोध मन में एक दूसरे की बातों सुनकर या एक दूसरे के बिहेवियर के कारण होती रहती हैं ऐसी अग्नियां, ऐसे युद्ध होते रहते हैं। भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि भगवान जो है वो समस्त सृष्टि के पालन करने वाले, इसे चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं वो आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले। क्योंकि अगर जीव आत्म साक्षात्कार के पथ पर नहीं चलेगा तो फिर वो कभी भी भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। और अगर वो आत्म साक्षात्कार के यानी कि वो जब अपने आप को समझेगा कि मुझे इन भौतिक वस्तुओं से क्या लेना देना, इन भौतिक व्यक्तियों में मुझे नहीं उलझना है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है और मुझे बहुत आगे जाना है, इन छोटी छोटी चीज़ों में यदि हम बार बार उलझ जाएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलेंगे, तो फिर हम अपनी भक्ति कब करेंगे, अपनी साधना कब करेंगे, अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर कब बढ़ेंगे? तो अगर हम आत्मा साक्षात्कार को नहीं प्राप्त करते हैं, आत्मा की स्थिति पर नहीं आते हैं, तो भौतिक शरीर में रहकर बस इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान कहते हैं इच्छा और घृणा के कारण द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण सारे जीव मोहग्रस्त हो जाते हैं और वो सोच नहीं सकते, अपना जीवन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी यही बात शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतएव भगवान चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम वापिस आ जाए और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाए। ये भगवान की अनुकंपा है, भगवान की कृपा है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दुखों में तीनों तापों में जल रहे हैं, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम स्वयं आए इस भौतिक जगत में अपनी इच्छा से अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान इतने जेनरस हैं, इतने भगवान उदार हैं, इतनी कृपावान हैं कि वो चाहते हैं कि जीव इन भौतिक तापों से जो तीन ताप से वो मुक्त हो जाए और मेरे परम धाम में जहाँ पर कोई कष्ट नहीं वहाँ पर आ जाए, वापस से आ जाए। सृष्टि की सारी योजना ऐसी है, लेकिन जो चेत नहीं करता वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अब आगे नहीं बढ़ सकता तो क्या करता है, इसी भौतिक जगत में इन कष्टों को उसे भोगना पड़ता है। अतएव भगवान चाहते हैं कि प्रामाणिक प्रतिनिधि की ही संसार पर शासन चलाएं। भगवान कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते कि क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सबकी मुक्ति हो, सारे जीव जो है वो आत्म साक्षात्कार के पद पर आगे बढ़े और पुनः अपने मेरे धाम में वापस आ जाए, इसलिए भगवान चाहते हैं कि प्रामाणिक प्रतिनिधि ही शासन चलाए। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज ही शासन चलाए, वही राजा बने, इसलिए भगवान का जो अवतार हुआ था वो अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हुआ था, जिनको उनकी योजना से कुछ लेना देना नहीं रहता। वापस से देखिए, भगवान कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ लेना देना नहीं, यानी भगवान को कुछ नहीं समझते, भगवान की योजना को नहीं मानते, भगवान की शरण में नहीं आते, ऐसे व्यक्तियों का विनाश करके भगवान पुनः धर्म की स्थापना करना चाहते थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिसे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। भगवान चाहते थे कि अधर्मी जो है वो नाश हो जाए और धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो शांति से इस राज्य को संभाले। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध यानी अंकुर महाराजा परीक्षित के रूप में बच गई तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी ने शौनक मुनि के प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया, कथम प्रवृत्त के कैसे वो राज्य स्वीकार उन्होंने कैसे किया, क्योंकि वो जो उनको तो ऐसा लग रहा था कि मैंने इतना अपराध किया है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया, युधिष्ठिरम प्रीतमाना बभुवः, क्योंकि उनको राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण को प्रीति हुई, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने इस राज्य को स्वीकार किया। और उन्होंने राज्य किस प्रकार किया वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।